ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆப் கேங்கே கி கேசே தேக் லேதே ஹோங்கே, பரமேஸ்வர் தோ கஹீ திக்தே ஹி நஹீ ஹை. விஸ்வதஹ சக்ஷுஹு, பரமேஸ்வர் கஹேகா विश्वतः चक्षुर, विश्वतो मुखो, विश्व ही जिसका मुख है, ये विश्व ही जिसकी चक्षु, ये सूर्य चंद्र क्या है, परमेश्वर की चक्षु है. अच्छा, उनको देखने के लिए चक्षु चाहिए क्या, सुनने के लिए कान चाहिए? तो नहीं. उपनिषद में कहा कि परमेश्वर को देखने के लिए जैसे हम लोगों को चक्षु की आवश्यकता है, वैसे परमेश्वर को देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता नहीं है. कान की आवश्यकता नहीं है, चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं है, ग्रहण करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं. श्वेता श्वेतर श्रुति कहती है, अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः सश्रुणोत्य कर्णः. अपाणी पाद जवनो ग्रहीता, बिना हाथ पैर वो जवन दौड़ सकते हैं, बिना हाथ वो ग्रहण कर सकते हैं. देखो, यही परमेश्वर की महिमा है. पश्यति अचक्षुः, वो बिना चक्षु देखते हैं. सश्रुणोत्य कर्णः, बिना कान वो सुनते हैं. हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, परमेश्वर वो देखते हैं, इसलिए तो फल देते हैं. और फल में कभी भी वो व्यभिचार नहीं होता. जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, उनको वो फल उनको ही मिलेगा, ये नहीं कि पड़ोसी को मिलेगा. देखिए कितना ध्यान रख रहे होंगे परमेश्वर. हम लोगों के बीच में कभी क्या हो जाता है, एक दूसरे की चीज जो है हम एक दूसरे में बदल देते तो पता भी नहीं रहता है, किंतु परमेश्वर के वहां ऐसा नहीं है. क्रतौ सुप्ते जागृत तमसि फल योगे क्रतुमताम. भगवान है कि वो क्रतौ सुप्ते, कर्म तो समाप्त हो जाता, कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वो कुछ अवधि में ही किया जाता है, उस अवधि के बाद यज्ञ कर्म समाप्त हो जाता है. तो कहा सुप्ते जागृत त्वमसि, तो भगवान आप जागते हैं. देखिए कोई काम कर रहा है तो देखने वाला यदि सजाग है तो वो देखेगा कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उनको बढ़ोतरी करेगा कि नहीं. आप कहीं कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो बखूबी आप कर्तव्य निभाते चले जा रहे, तो आपकी ऑफिस का जो बॉस है वो देखता है कि ये बढ़िया काम कर रहा. जो ढंग से नहीं कर रहा है उनको भी वो देखता है. जब परीक्षण के लिए बोला जाता है तो वो कहते हैं कि ये काम बढ़िया कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, तो वो जग रहा है तभी तो. यदि वो दिन भर सोते रहते ऑफिस में तो उनको पता नहीं चलता. तो ईश्वर है वो जगते हैं. और करते क्या है, तो कहते हैं कालांतर में वो कर्म का जो फल है, वो फल के साथ संबंध, वो ईश्वर वो कर्ता के साथ करा देते हैं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. भगवान ने कहा, देखिए भगवान ने मनुष्य को कर्म में स्वतंत्र बनाया किंतु फल में नहीं. कर्म कर लिया तो मनुष्य फल के लिए उनको तैयार रहना ही होगा. यदि निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तो निषिद्ध कर्म करते समय दुख नहीं होता, किंतु जब निषिद्ध कर्म का जो फल दुख है वो आएगा ही आएगा, उस समय आप जो है परतंत्र होकर के उसको भोगना पड़ेगा। तो परमेश्वर है वो सभी कर्मों के अध्यक्ष है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, इसमें कहा ना कर्माध्यक्ष है, कर्म का अध्यक्ष। समझ, अध्यक्ष किसको कहते, जो केवल देखते रहे कुछ करे नहीं। देखिए कहीं सभा होती है तो उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष का काम है वो बस केवल आंख से देखते रहना, कुछ करना नहीं। करने वाले वो मंत्री वगैरह होते, वो सब क्रिया करते। अध्यक्ष का अर्थ है जो केवल देखे, और परमेश्वर है वो अध्यक्ष है, चक्षु के द्वारा वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहे हैं। अब वो करते समय वो टोकते नहीं है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं। वो साक्षी है, वो अध्यक्ष है, वो देखते हैं और देख करके वो जो कर रहे हैं, जैसे समझ लिए क्रिकेट की मैच चल रही है तो उसमें जो वो अंपायर रहता है वो क्या करता है, वो देखता है। वो खिलाड़ियों को उस समय सलाह नहीं देता है कि तुम ये करो ये करो, ऐसे तुम बॉलिंग करो ऐसे बैटिंग करो, ऐसा सलाह वो नहीं दे सकता। वो है ही वो देखने के लिए, तो जैसा खेल होता है उसको निर्णय देना होता है वो तो तुरंत दे देते कि हाँ ये आउट है या उन्होंने जो है बॉल ऐसा फेंका वैसा फेंका, जो भी बताना होता वो तुरंत बता देते हैं। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया कर्म करने के लिए, लेकिन फल देने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम कर्म क्यों करते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना से कुछ चाहिए इसलिए तो कर्म कर रहे हैं ना, नहीं तो थोड़े ना करते। प्रयोजनम अन उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कहा है कि यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो मंद व्यक्ति भी कुछ नहीं करता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए इच्छा की पूर्ति, तो इच्छा की पूर्ति करने वाले कौन है, परमेश्वर है। तो यहां पर ओमकार को इसलिए इंद्र शब्द से कहते हैं कि ओमकार वो इंद्र है, यानी सर्व कामेशः परमेश्वर है। अब बताइए यहां पर कोई जड़ शब्द से प्रार्थना नहीं की जा रही है। वैसे हमारे मन में क्या है, ओमकार का अर्थ एक जड़ शब्द, ऐसा नहीं। ओमकार से अभिप्राय है ओमकार का जो वाच्य या लक्ष्य परमात्मा, वो हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। इसलिए कहा सर्व कामेशः ईश्वर जो इंद्र है, मेधया स्पृणो तो मेरे को मेधा से संपन्न करे। तो देखिए हम ईश्वर से इस तरह से ओमकार से इस तरह की प्रार्थना करते तो हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और ग्रंथार्थ का विस्मरण नहीं होता है फिर, और विस्मरण नहीं होगा तो फिर हम जो है वेदाध्ययन और उपनिषद का जो अध्ययन है वो बखूबी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत लंबे काल से सुनते चले आ रहे, कई लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत रहती है। लेकिन देखिए हम यहां पर आके सुनते एक घंटा सुनते हैं, दो घंटा सुनते हैं, तो आपात तो ऐसा लगता है कि हमको याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूर याद रहता ही है। ठीक है, न्यूनाधिक हो सकता है, किसकी प्रज्ञा सतेज है तो उसको ज्यादा याद रहेगा और किसको कम याद रहेगा, लेकिन याद तो जरूर रहेगा ही। अब वो अधिक याद करने के लिए हम अभ्यास बढ़ाए तो हम उसमें भी सफल हो सकते हैं कि आज कुछ कम रहा, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन। अभ्यास जैसे बढ़ता चला जाता है तो हमारा फिर उस समय चातुर्य भी और बढ़ता चला जाता है। संसार में इस बात को हम देखते हैं, जिस विषय का हम अभ्यास करते हैं उसमें प्रावीण्य जरूर आना ही आना है। अभ्यास का ये जो है अवश्य फल है ही है, इसलिए हमको श्रवण करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचे कि हमको समझ में नहीं आ रहा इसलिए छोड़ दे, ऐसा नहीं। संसार में दुख ही दुख है, फिर भी कहां छोड़ रहे, छोड़ रहे बताओ, ऐसा है तो छोड़ देना चाहिए। तो जब संसार में प्रतिपद दुख ही दुख है, फिर भी उनको जो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो इस स्वाध्याय प्रवचन को हम कहे कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तब भी छोड़ना नहीं चाहिए, करते ही रहना चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ऐसा कहा अपने उपनिषद में। गुरुकुल से जब विद्यार्थी अध्ययन करके घर जाने के लिए तैयार है, जिसका उनका समावर्तन संस्कार किया जाता है, तो स्नातक होने के बाद बड़ी दिव्य परंपरा है अपने यहां समावर्तन संस्कार की, आजकल भी होता है, लेकिन वो अंग्रेजी ढब से होता है, न जाने कैसे कैसे कपड़े पहनते, कैसे कैसे कैप लगाते हैं, वो सब होता, किंतु अपने यहां देखो क्या कहते हैं। वेदम अनुच्चाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ती सत्यम वदह धर्मम चर अतिथि देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव स्वाध्यायन मा प्रमदः भूत्ये न प्रमदितव्यम इत्यादि अनेक कई एक बातें वो गुरुकुलवासी जो विद्यार्थी है उनके लिए कही गई है, ब्रह्मचारी के लिए। क्यों? कि अब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है, तो गृहस्थाश्रम में उनको इसी प्रकार से रहना है, तो ये संस्कार। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे याद रहे या न रहे। और नहीं रहने का सवाल ही नहीं। आप जो है पतीली के अंदर घी डालते और फिर आपको निकालने की आवश्यकता पड़ी, निकाल लिया और पतीली को उल्टी रख दीजिए, सुबह से शाम तक रखिए, शाम को आप देखेंगे तब भी उसमें घी तो चिपका हुआ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पानी होता ना तो सूख जाता, लेकिन घृत तो रहता ही। तो ऐसे ही हम लोग यदि यहां आते स्वाध्याय और प्रवचन करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि याद नहीं रहता है, नहीं रहता है, फिर भी ये करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने यहां एक आचार्य हुए व्याकरण के, बहुत बड़े आचार्य हुए, तो वो पहले पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में, तो संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय होता यह है कि पहले सूत्र रटना पड़ता है, बायहाट करना पड़ता है, यदि सूत्र बायहाट नहीं हो गए तो उसमें प्रवेश ही नहीं होगा संस्कृत में, तो याद करना पड़ता है। पाणिनि सूत्र, तो एक सूत्र है टेहे, एक ही वर्ण का सूत्र टेहे, तो वो याद कर रहे थे, वो उनको टेहे सूत्र याद नहीं हो रहा था, वो थक करके चले गए कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है, ये छोड़ दो, होता है ऐसा। लोग पढ़ने के लिए आते लघु कौमुदी जिसको याद करना पड़ता है, तो प्रथम जो 14 सूत्र है वही कई लोगों को याद नहीं होता है, एक महीनों तक याद नहीं होता है। तो कई लोग जो है लघु कौमुदी गंगा जी में कहते हैं, गंगा जी आपको अर्पण, मैं ये चला, ये मेरा काम। तो ऐसे ये भी, ये जो आचार्य है उनको भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने रात में गुरुकुल छोड़ दिया। वो कह रहे चलो रात में भग जाना चाहिए, नहीं तो सुबह में गुरुजी नहीं जाने देंगे। तो जा रहे थे रात में, जो है उन्होंने काफी दूर निकल गए चलते चलते, तो सुबह होते एक गांव आया, तो पानी पीना था तो कुएं के पास गए, पहले का जमाना था, वो कुएं के ऊपर कहीं एक पनिहारिया थी जो पानी भर रही थी, तो जाकर के पानी मांगा। तो कुएं के नजीक जाकर के वो पीने के लिए जैसे देखते हैं अगल बगल में वहां बैठे भी, तो पनिहारिया जो है रस्सी से पानी खींचती है, तो रस्सी जो है वहां पर एक लगा हुआ पत्थर है, उस पत्थर से वो पानी खींचते खींचते वो रस्सी पत्थर से घिसती चली जाती है, तो पत्थर के अंदर भी बड़ी गहरी जो है घिसी बन गई, लकीर बन गई। तो उन्होंने देखा कि देखो पत्थर के ऊपर ये रस्सी ने जो है यहां पर ये जो है घिसी बना दी, तो मेरा जो ये माइंड है बुद्धि है वो ऐसी तो नहीं, मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूं, मैं भी यदि अभ्यास करूंगा तो अवश्य याद रहेगा ही रहेगा। वहीं से वो वापस लौट चले, कह रहे कि पुनः गुरुकुल में जाना, और गए। और फिर उन्होंने जो है ठाना, मन में ठान लिया कि अब ये अभ्यास करना ही करना है। तो बहुत बड़े आचार्य बन गए व्याकरण के। तो ऐसा है, अभ्यास का ये फल है, इसलिए हमको याद रहे या न रहे किंतु स्वाध्याय और प्रवचन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये इसलिए जो है ये शांति पाठ किया जाता है जिससे कि हमको मेधा शक्ति की प्राप्ति होती है, इस प्रणव मंत्र का जप करते रहना चाहिए तो अवश्य मेधा शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इससे ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इंद्र शब्द से ओंकार के लिए कहा गया कि वो सर्वकामेश है, तो सर्वकामेश होने से सर्व शब्द में सब ग्रहण हो जाता है, तो जो भी चाहिए वो हमको वो दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। और एक बात कही जा रही है, मेधा से संपन्न करे इतना ही नहीं, मेधा की प्राप्ति होने के बाद यदि हम वेदांत का श्रवण कर रहे और हमारा श्रवण मन निधि ध्यान पूर्वक का है, तो उससे साक्षात्कार होता है तत्वमसी महावाक्योत्थ। जब गुरु मुख से जब हम ये सुनते हैं तो हमको वो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो वो साक्षात्कार ही क्या है, श्रवण का फल है। तो वो केवल श्रवण ही तक हम सीमित न रहे, फल भी मिले, इसलिए ओंकार से आगे वो फल के लिए प्रार्थना की गई। देखो चतुर्थ पंक्ति में देखियो, अमृतस्य देव धारणो भूयासम, ये जो है ना उसमें देव शब्द है ना, वो ओंकार के लिए संबोधन है। ओंकार के लिए कहा जाता है हे देव, यानी हे दीप्तिमान प्रणव, हे दीप्तिमान प्रणव, अमृतस्य धारण भूयासम। भावना की गई कि अमृतस्य धारण, हम अमृत को धारण करने वाले हो जाए। अमृत से यहां कोई पेय पदार्थ न समझियो, अमृत से अभिप्राय है मोक्ष का साधनभूत जो ज्ञान, उस ज्ञान को हम धारण करने वाले हो जाए। देखिए इतनी ये प्रार्थना है इसमें ओमकार से कि हम जो है वो ज्ञान को धारण करने वाले हो। अब ज्ञान कैसे होगा? ये स्वाध्याय और प्रवचन से। स्वाध्याय और प्रवचन हम करते रहे तो उसका जो फल है ज्ञान अवश्य होगा ही होगा। इसलिए हम ज्ञान को धारण करने वाले हो जाए। और ज्ञान यानी कि साक्षात्कार, ज्ञान का अर्थ है अवगति पर्यंत। भगवान भाष्यकार कहते हैं अवगति पर्यंत को यहां पर ज्ञान से अभिप्राय है, अवगति तक। जैसे ज्ञान होता है ना कि संसार में भी कई एक पदार्थ को हम जानते हैं तो उनको भी ज्ञान कहते हैं, किंतु यहां ज्ञान का अभिप्राय है अवगति, आत्मा का अवगमन, ब्रह्मात्मिकत्व। मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं, मैं अलग नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव पर्यंत ज्ञान हमको यदि हो तभी जो है ये प्रार्थना का जो है उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए कहा धारण भूयासन, धारक में उनका धारक हो जाओ। भूयासन माने अहम भवेयम, मैं हूं ऐसा हो। तो यहां तक जो है ओमकार से मेधा की सिद्धि के हेतुभूत मंत्र और उनकी प्रार्थना बताई गई। वेदांत श्रवण में ये आवश्यक है। अब देखिए हम श्रवण कर रहे तो श्रवण जो है स्वस्थता से तो हम तभी श्रवण कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए ना। इसलिए अब जो है आगे शरीर की स्वस्थता की प्रार्थना की जा रही है। शरीर हमारा रोगादि से रहित हो, इसलिए प्रार्थना वही ओमकार से की जा रही है। शरीरम में विचर्षणम कहा कि ओमकार से कहा मैं शरीरम विचर्षणम। भावना की गई कि मैं यानी मम यानी मेरा शरीरम, ये जो मेरा शरीर है वो विचर्षणम। भूया तो ऊपर से लगा दीजिए, मेरा शरीर विचर्षण हो। देखे ये शरीर जो है निरोगी जब तक नहीं रहेगा तब तक हम जो है व्यावहारिक कार्य भी ढंग से संपन्न नहीं कर सकते हैं, तो ये स्वाध्याय और प्रवचन कैसे कर सकेंगे। इसलिए शरीर पहले स्वस्थ होना चाहिए। विचर्षणम का अर्थ है रोग रहित तो हो। ये बात तो हम जानते हैं कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है वो क्या है, धर्म का साधन है। अब शरीर यदि स्वस्थ नहीं होगा तो धर्म नहीं हो पाएगा। धर्म कर्म भी वही कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, जिसका धन स्वस्थ है। तन मन और धन तीनों स्वस्थ हो वही जो है धर्म कर्म कर सकता है। यदि तन स्वस्थ हो लेकिन मन स्वस्थ न हो तो वो मन से वो गलत विचार ही करेगा और किसी के गले काटने की ही बात सोचेगा। तो तन भी स्वस्थ, अच्छा धन भी स्वस्थ होना चाहिए। धन यदि स्वस्थ नहीं है तब भी वह धन यदि किसी को दिया जाए तो उससे कोई बहुत लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। और धन स्वस्थ क्या है, व्यवसाय से प्राप्त किया गया धन। आप कहेंगे कि व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ है निश्चय, एक निश्चय, जैसे जो नीति व्यापार के लिए कही गई उस नीति के अनुरूप कर्म करना, वही क्या है व्यवसाय। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखा है। और बिजनेस और व्यवसाय में फर्क, बिजनेस में ऐसा होता अभी बोला अभी फो, और व्यवसाय में ऐसा नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे मेरे को न मिले लेकिन देना है तो दे ही देना है, फिर वो व्यवसाय। और उससे जो प्राप्त धन वो जो है साफ है। और गीता के अनुसार यज्ञ शिष्टा सुन संत इत्यादि से जो 100 रूपये में से 5 या 10 रूपया धर्म के लिए जो प्रयोग करता है तो वो 90 रूपया क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से तन मन धन की शुद्धि के लिए यहां ओंकार से प्रार्थना की गई। आगे की बात है, भगवान की कृपा होगी तो विचारेंगे। ओम।